आवाजों की एक आवाज रिख्ता पॉडकास्ट।
हाजरी नादाब, रिख्ता पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हमारा ये एपिसोड साहिर लुधियानवी की नजर है, जिसका उन्वान है साहिर लुधियानवी नगमों में जिंदगी।
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
जब 8 मार्च 1921 में अब्दुल हई लुधियाना में पैदा हुए, तब लुधियाना बड़ा शहर नहीं था। लुधियाना में मुसलमानों की तादाद हिंदू और सिखों के मुकाबले बेहद कम थी, और अब्दुल के दोस्तों में अक्सर हिंदू और सिख दोस्त शुमार होते थे, जो फारसी रस्मुलखत में लिखी जाने वाली पंजाबी बोलते थे। अब्दुल भी गुरमुखी और फारसी रस्मुलखत के साथ साथ पंजाबी और उर्दू जबान का खासा इल्म रखते थे। फिरका परस्ती और नामो निशान से दूर दूर तक वास्ता न रखने वाले लुधियाना ने अब्दुल को जज्बात और एहसास का एक खुशनुमा माहौल मुहैया कराया, और उनका तख्लीकी जहन शायरी की जानिब रागिब होने लगा। उनके वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद था।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुने में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुने में उड़ा।
औरत को सिर्फ एक जिस्म की नजर से देखने वाले चौधरी फजल मोहम्मद ने कुल 12 शादियां की। जब चौधरी फजल ने अपने 12वें निकाह को अंजाम दिया, तब अब्दुल की मां सरदार बेगम सुर्ख स्टैंडस्टोन वाली हवेली का ऐशो आराम छोड़कर अब्दुल के साथ अपने मायके चली गईं। उन्होंने जमीन जायदाद बेचकर अय्याशी करने वाले चौधरी फजल पर मुकदमा दायर कर दिया, जो 13 सालों तक चला, और आखिरश अदालत का फैसला बेगम के हक में आया। लेकिन चौधरी ने जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले तमाम माफिए बेगम के पीछे लगा दिए। धमकियां यहां तक आ गईं कि अब्दुल को चौधरी के हवाले कर दिया जाए, वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इस सब के बावजूद बेगम ने हार नहीं मानी और डटकर मुश्किलों का सामना किया। नतीजतन अब्दुल के जेहन में इन तमाम वाकयात का गहरा असर पड़ा, और होते होते अब्दुल हई साहिर लुधियानवी हो गए। दोस्तों, साहिर का अपनी माँ के साथ बड़ा गहरा रिश्ता था। इस रिश्ते पर रोशनी डालने के लिए मैं आपको जावेद अख्तर साहब का जश्न रेखता का एक इंटरव्यू सुनाता हूँ, जहाँ उन्होंने साहिर और उनकी माँ के रिश्ते की गहराई को बयान किया है।
एक तरफ एक बाप जो कि बहुत अमीर आदमी था, बहुत बड़ा जागीरदार था, और उस बाप के होते ये इंतहाई गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे। इसलिए कि जब माँ और बाप अलग हुए तो कोर्ट में मामला चला गया, बाप जागीरदार थे, उन्होंने पता नहीं कितनी शादियां की थी, लेकिन बेटा एक ही हुआ था साहिल, बाकी बेटियां थी। अब जागीरदार को तो साहब अपनी जागीर के लिए बेटा चाहिए, तो केस हो गया कि बेटा जो है ये बाप को मिलेगा कि माँ को मिलेगा। और अल्टीमेटली कोर्ट में 8 साल के बच्चे को बुलाया गया और उसने कहा मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा, तो सो वो बाप से दूर हो गया। अब इतने बड़े बाप का बेटा जो बहुत बड़ा जागीरदार था, ये एक गरीबी में मुफलिसी में अपनी माँ के साथ पला। माँ ने अपनी जिंदगी इसके लिए वक्फ कर दी, माँ ने किस तरह से पाला वो आप उसकी शायरी में कहीं कहीं दिखाई देता है। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, जो नज्म है ये साहिर की माँ के अल्फाज है जो साहिर ने लिख दिए। साहिर की जिंदगी में उनकी माँ जितनी इंपॉर्टेंट थी वो अनइमेजिनेबल है, मैंने कभी देखा ही नहीं। हम में से हर एक अपनी माँ से मोहब्बत करता, लेकिन इतना मजबूर है माँ के सामने, हैरत होती थी। और कौन आदमी जो इतना खुद एतमादी का आदमी है, बड़े से बड़े प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, स्टार से झगड़ा लेता है, म्यूजिक डायरेक्टर से झगड़ जाता है, खड़ा हो जाता है कहीं भी, ये हिम्मत थी उसमें। मिनिस्टर्स के सामने खड़े होकर बोल देता था कुछ भी। वो आदमी माँ से उसका क्या रिश्ता था कि एक लंबा सा घर था वर्सोवा में, ड्रॉइंग रूम, फिर एक कमरा, फिर एक कॉरिडोर, फिर माँ का कमरा। तो एक एंड पे माँ का कमरा था और एक एंड पे ड्रॉइंग रूम। अब हम ड्रॉइंग रूम में बैठे हैं, बल्कि हम क्या, मैं बैठा हूँ इसलिए कि वो तो बैठते नहीं थे। साहिर साहब 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे कितनी देर वो शराब पी रहे हो, खड़े होके पीते थे, बैठ के नहीं। वो टहलते रहते थे, खड़े रहते थे, मगर शराब पीते वो तो बैठते नहीं थे, बस उनकी आदत थी। अब अजीब भी लगता था कि हम बैठे हुए हैं, हमारे बड़े हैं भाई, वो टहल रहे हैं, यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, ग्लास हाथ में, बैठते नहीं। अब बातचीत हो रही है तो कोई बात मैंने उनसे कही या किसी ने भी कही कि साहिब साहब ये तो आपका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, सही बात है, बिल्कुल आजकल यही हो रहा है। तो एक तो अपने को फकीर बोलते थे अक्सर, अब दूसरे दूसरों को बोलते हैं, वो खुद ही को बोलते थे। तो अब फकीर के दिमाग में एक बात आ गई, कह दी भाई तुम लोग को अच्छी लगी, बड़ी बात है, खुशी हुई मुझे तो कि तुम्हें पसंद आई ये बात, यहां कह दिया। अब हम फिर बात चल रही है, ही वुड वॉक आउट इन हाफ अ मिनट, क्रॉस द होल हाउस, गो टू द मदर। माँ अपने कमरे में बैठी कुछ कर रही हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम ड्राइंग रूम में क्या डिस्कशन चल रहा था, ग्लास हाथ में है उसके, वहां माँ को बताएगा, माँ जी वो ये बातचीत चल रही थी तो मैंने ये कहा, तो वो लोग कहने लगे कि भाई ये तो बड़ी कमाल की बात कह दी, ऐसी तो कोई कमाल की थी नहीं। तो माँ कहे नहीं बेटा है तो बहुत अच्छी बात कही तूने, बहुत सही, बहुत अच्छा, सही है, फिर वापस आ जाए। कोई भी बात है ये, यानी इट कैन बी फनी वंस, मगर ये एक 40-45 साल के कामयाब आदमी पे ये ग्रिप हो माँ की, ये मैंने देखा नहीं। He had to take the confirmation from the mother. वो जिंदगी में कहीं अकेले जा नहीं सकता। आप लोगों में से जो थोड़े बड़े हैं, जिन्होंने साहिर के मुशायरे देखे हैं या बुलाया है या वो मुशायरे में शिरकत की है, देखा है, उसको जाना है अमृतसर, उसको जाना है हैदराबाद, उसको जाना है बुरहानपुर मुशायरे में, कार में जाता था माँ को लेके, वो बिना माँ के सफर ही नहीं कर सकता था। इतना स्ट्रेंज सिचुएशन, इट्स नॉट नॉर्मल। और कौन आदमी, ऐसा नहीं कि कोई स्पाइनलेस वीक सा आदमी, अ मैन हु वुड स्टैंड अप अगेंस्ट एनीबॉडी, एनी पावर। उसने ऐसे ऐसे एडवेंचर्स काम किए हैं जिंदगी में कि अच्छे अच्छों की हिम्मत ना हो।
दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय rekhtabooks.com। अगर आप भी साहिल लुधियानवी की शायरी के फैन हैं, तो जाइए rekhtabooks.com पर और ऑर्डर कीजिए खूबसूरत मोड़ साहिल लुधियानवी बुक कॉम्बो सेट। पहले ऑर्डर पर पाइए 10% की छूट। अभी ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। साहिर उस वक्त के वाहिद ऐसे शायर थे जिन्होंने ना सिर्फ जमींदारी और जागीरदारी की रवायत की मजम्मत की, बल्कि जागीर उनवान से एक नज्म लिखने के बाद अपने बाप से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। अब्दुल हई उर्फ साहिर लुधियानवी के खानदान में दूर दूर तक शेर व शायरी की रिवायत का नामो निशान नहीं मिलता। फिर भी उस्ताद फैयाज हरियाणवी की पनाह में साहिर तकरीबन 15-16 की उम्र से ही शायरी करने लगे थे। स्कूल के ही दिनों में साहिर को फारसी उर्दू की सैकड़ों गजलें और नज्में हिफ्ज थी। साहिर अपने दोस्तों को अक्सर गालिब, मीर, सौदा, इकबाल और फिराक गोरखपुरी की शायरी सुनाया करते थे। कॉलेज में पढ़ते हुए कॉलेज में शाया होने वाले रिसाले में उनकी नज़में शाया होने लगी। अंग्रेजों के खिलाफ चोरी छुपे छपने वाले कीर्ति लहर रिसाले में भी उनकी नज़में छपी और देखते देखते साहिर उर्दू अदबी दुनिया के नुमाइंदा सितारे कहलाने लगे, जिनके बगैर मुशायरों को मुकम्मल नहीं माना जाने लगा। सन 1943 में साहिर लाहौर में जा बसे, जहां रहकर उन्होंने तलखियां नाम से अपना पहला शेरी मजमुआ पूरा किया, जिसे 1945 में उर्दू के एक नामी गिरामी पब्लिशर ने शाया किया। तलखियां ने खूब सुर्खियां बटोरी और उन्हें अदबे लतीफ और शाहकार जैसे नामी रिसालों का मुरीद बना दिया गया। इसी साल जब हैदराबाद में तमाम तरक्की पसंद शोरा की एक कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, तब वहां साहिर ने अपनी उर्दू की मकबूल नज्म इनकलाबी शायरी पढ़ी और हुआ यूं कि उनके चाहने वाले रात भर बारहा उन्हें ही सुनने की जिद करते रहे। 1945 में साहिर को आजादी की राह पर नगमे लिखने के लिए मऊत किया गया, जिसमें राज कपूर बतौर नायक काम कर रहे थे। इस फिल्म में साहिर ने कुल 4 नगमे लिखे, मगर फिल्म की रिलीज की तारीख टलती रही और 15 अगस्त 1947 आ गया। हिंदुस्तान आजाद भी हुआ और दो मुल्कों में बट गया। पूरा मुल्क कौमी फसादात से 2-4 हो रहा था। उन दिनों साहिर की माँ दिल्ली में थी। वो मुंबई से दिल्ली पहुंचे और अपनी माँ को ढूंढने लगे। मालूम हुआ कि उनकी माँ को रिफ्यूजी कैंप में भेजकर लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया था। कुछ दोस्तों की मदद से, जिनमें प्रकाश पंडित भी थे, उन्हें खबर लगी कि उनकी माँ लाहौर में सही सलामत है। 2 महीने बीतने के बाद अक्टूबर 1947 में साहिर अपनी माँ से मिलने लाहौर गए और 1.5 साल तक वहीं रहे। हालांकि वहां उनका जी नहीं लगा। उन्होंने जब वहां साम्यवाद को बढ़ावा देने वाले विवादास्पद बयान दिए, तो पाकिस्तान सरकार की जानिब से उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। 1949 में तकसीम के बाद साहिर वापस गुपचुप लाहौर से दिल्ली भाग आए और दिल्ली में उन्हें प्रीत लड़ी नाम के एक अदबी रिसाले के मुरीद के तौर पर काम मिल गया। साल भर दिल्ली में आर्थिक तंगी के साथ दिन गुजारने के बाद साहिर ने फिर मुंबई की जानिब रुख किया और चंदा मामा दूर के जैसा मशहूर नगमा लिखने वाले नगमा निगार और संगीतकार प्रेम धवन के घर पहुंच गए। वहां प्रेम धवन और कृष्ण चंदर की मदद से उन्हें 1951 में नौजवान नाम की फिल्म के लिए नगमे लिखने का काम हासिल हुआ। सचिन देव बर्मन की धुन, साहिर के लिरिक्स और लता जी की आवाज ने ऐसा कमाल दिखाया कि फिल्म का नगमा ठंडी हवाएं लहरा के आए आज तक भुलाया नहीं जा सका। इसके बाद साहिर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आजादी की राह से लेकर लक्ष्मी तक साहिर ने कुल 113 फिल्मों में गीत लिखे। कहा जाता है कि साहिर ही ऐसे इकलौते नगमा निगार थे जो उस वक्त संगीतकारों से 1 रुपया ज्यादा मेहनताना लिया करते थे।
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
मशहूर नगमा निगार गुलजार कहते हैं कि फिल्मी गाने जब हिट होते हैं, यानी हर खासो आम में मशहूर होते हैं, तो उसकी वजह धुन होती है और अल्फाज का नंबर दूसरा होता है, कभी कभी तीसरा भी। जब आवाज लता, किशोर या रफी जैसे गायकों की हो, अल्फाज धुन की लगाम का काम करते हैं और दौड़ने वाली धुन होती है। लेकिन ये शरफ सिर्फ 2 शायरों को हासिल है, कि गाने उनके अल्फाज की वजह से, उनकी शायरी की वजह से हिट हुए। पहले पंडित प्रदीप और दूसरे साहिर लुधियानवी। 1955 में शाया हुए साहिर की एक तवील नज्म परछाइयां के मुतालिक मशहूर शायर अली सरदार जाफरी ने दिबाचा लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि नज्म में हर दो तस्वीरों के बीच तखयुली जस्त है, जिसे पढ़ने वाला शायर के साथ शरीक हो जाता है। तस्वीरों का ये सिलसिला कामयाब मोहब्बत के दिलकश लम्हों तक पहुंचकर खत्म हो जाता है और बहर की तब्दीली के साथ एक नए मंजर की शुरुआत होती है, जो आसपास की जिंदगी जंग, कहत और इफलास के सैलाब में डूब जाती है। आम जिंदगी की तस्वीर जो एक सैलाब की सी कैफियत के साथ उभरती थी, अब खत्म हुई तो मरकजी किरदार यानी लुटे हुए फनकार की महबूबा की दर्दनाक तस्वीर का सिलसिला शुरू हो जाता है। नज्म की पहली बहर फिर वापस आ जाती है और तसव्वुरात की परछाइयां भयानक होकर जेहन के पर्दे से गुजरने लगती है और उस मंजिल पर पहुंच कर खत्म हो जाती हैं जहां किसी का कोई नहीं, सब अकेले हैं। उन्होंने आखिर में लिखा कि साहिर ने इस नज्म के जरिए उर्दू की तवील नज्मों और अमन आलम के अदब में खूबसूरत इजाफा किया है। हाजरीन, हालांकि अमृता प्रीतम को साहिर से इश्क था, मगर साहिर तमाम उम्र कुंवारे रहे और 59 की उम्र में 25 अक्टूबर 1980 को हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई। साहिर और अमृता की प्रेम कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए हमारा ही एक पुराना एपिसोड, मैं तेनू फिर मिलांगी, लव टेल ऑफ अमृता प्रीतम। तो हाजरीन, आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी, नगमों में जिंदगी, सिर्फ रेख्ता पॉडकास्ट पर। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू रेख्ता पॉडकास्ट। सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें। ज्यादा मालूमात के लिए विजिट करें www.rekhta.org।
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय rekhtabooks.com। अगर आप भी साहिर लुधियानवी की शायरी के फैन हैं, तो जाइए rekhtabooks.com पर और ऑर्डर कीजिए खूबसूरत मोड़ साहिर लुधियानवी बुक कॉम्बो सेट। पहले ऑर्डर पर पाइए 10% की छूट। अभी ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।